लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे उन नए शहीदों के लिए याचना करते हैं जो विश्व के विभिन्न भूभागों में सुसमाचार के खातिर अपनी जान जोखिम में डालते हैं। हमारी प्रार्थना है कि वे अपने साहस और मिशनरी उत्साह से कलीसिया को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया संत पापा फ्रांसिस का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। वैटिकन स्थित संत पेत्रुस महाकीर्तक घर के प्रांगण में रविवार 17 मार्च को संत पापा फ्रांसिस ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। देवदूत प्रार्थना के पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
करी फ्रतेल्ली सोरेल्ले बोंजोर्नो,
प्रिय भाइयों एवं बहनों सुप्रभात।
Oggi quinta domenica di Quaresima, mentre ci avviciniamo alla settimana santa, Gesù nel Vangelo ci dice una cosa importante. Cosa ci dice? Che sulla croce vedremo la gloria sua e del Padre.
आज 40 काल का पांचवा रविवार, जब हम पौत्र सप्ताह के करीब पहुंच रहे हैं, सुसमाचार पाठ में यीशु हमें कुछ महत्वपूर्ण बात बतलाते हैं। क्रूस पर हम उनकी और पिता की महिमा देखेंगे।
Ma com'è possibile che la gloria di Dio si manifesti proprio lì sulla croce?
लेकिन यह कैसे संभव है कि ईश्वर की महिमा क्रूस पर ही प्रकट हो? कोई सोचेगा कि यह पुनरुत्थान में प्रकट होता है, क्रूस पर नहीं, जो एक हार, एक विफलता है। इसके बजाय आज यीशु अपने दुखभोग के बारे बात करते हुए कहते हैं, मनुष्य के पुत्र को महिमान्वित होने का समय आ गया है। इसके द्वारा वे हमें क्या बतलाना चाहते हैं? संत पापा ने कहा,
Vuol dirci che la gloria per Dio non corrisponde al successo umano, alla fama, alla popolarità.
वे हमें बतलाना चाहते हैं कि ईश्वर के लिए महिमा मानवीय सफलता, प्रसिद्धि या लोकप्रियता में नहीं है। ईश्वर के लिए महिमा में आत्म संदर्भित कुछ भी नहीं है या जनता की तालियों के बाद शक्ति का भव्य प्रदर्शन भी नहीं है। इसके विपरीत ईश्वर के लिए महिमा इस हद तक प्रेम करना है कि अपना जीवन दे दिया जाए। उनके लिए स्वयं को महिमान्वित करने का अर्थ है अपने आप को अर्पित कर देना, खुद को सुलभ बनाना, अपना प्रेम अर्पित करना, और यह क्रूस पर चरम रूप में प्रकट हुआ, वहीं जहां यीशु ने ईश्वर के प्रेम को अधिकतम रूप में प्रस्तुत किया, दया के उनके चेहरे को पूरी तरह प्रकट किया, हमें जीवन दिया और अपने क्रूस पर चढ़ाने वालों को माफ कर दिया।
Il Signore ci insegna che la gloria vera, quella che non tramonta mai e rende felici, è fatta di dono e perdono.
San Papa ne kaha ki krus se jo ishwar ki kursi hai, prabhu hame sikhate hain ki sachi mahima jo kabhi fiki nahi padti aur hame khushi deti hai, vah hai ufar aur chhamashilta. Ufar aur chhamashilta ishwar ki mahima ke saar hain और वे हमारे लिए जीवन के मार्ग। हम अपने आसपास या अपने अंदर जो देखते हैं या उससे बहुत अलग मानदंड है, जहां हम महिमा को देने के बजाय प्राप्त करने की चीज के रूप में सोचते हैं, पेश करने के बजाय अपने पास रखने की चीज के रूप में।
La gloria mondana passa.
परंतु सांसारिक महिमा बीत जाती है और हृदय में कोई खुशी नहीं रह जाती। इससे किसी का भला नहीं होता, बल्कि विभाजन, कलह, ईर्ष्या बढ़ती है। संत पापा ने चिंतन हेतु प्रेरित करते हुए कहा,
¿Cuál es la gloria que desidero per me, per la mia vita?
और अब हम अपने आप से पूछें, वह कौन सी महिमा है जो मैं अपने लिए, अपने जीवन के लिए चाहता हूँ, जिसका मैं अपने भविष्य के लिए सपना देखता हूँ? अपने कौशल, अपनी योग्यताओं या अपनी चीजों से दूसरों को प्रभावित करना चाहता हूँ? या क्या यह एक उपहार है, क्षमाशीलता का मार्ग है, क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु का मार्ग, उन लोगों का मार्ग जो प्रेम करने से कभी नहीं थकते, निष्ठापूर्वक दुनिया में ईश्वर की गवाही देते हैं और जीवन की सुंदरता को चमकने देते हैं? मैं अपने लिए क्या गौरव चाहता हूँ? वास्तव में जब हम देते और क्षमा करते हैं तो ईश्वर की महिमा हमारे अंदर चमकती है। तब माता मरियम से प्रार्थना करते हुए संत पापा ने कहा,
La Vergine Maria, che ha seguito con fede Gesù nell'ora della passione, ci aiuti ad essere riflessi viventi dell'amore di Gesù.
कुआरी मरियम, जिन्होंने दुख भोग की घड़ी में ईमानदारी से यीशु का अनुसरण किया, हमें यीशु के प्रेम का जीवन प्रतिबिंब बनने में मदद करें। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
Angelus Domini, nuntiavit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ci ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tu.
Ave Maria, benedicta vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने हैती में 6 अफ्रीत लोगों में से एक शिक्षक और 4 धर्म सामाजियों की रिहाई पर संतोष व्यक्त किया और बाकी 2 अफ्रीत लोगों की रिहाई की अपील की। साथ ही युद्धग्रस्त यूक्रेन, फिलिस्तीन, इसराइल, दक्षिण सूडान और सीरिया के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा,
Sono stati liberati un insegnante e 4 del 6 religiose.
मुझे यह जानकर राहत महसूस हुआ कि हैती में पिछले 23 फरवरी को पौत्र हृदय के धर्म बंधुओं के धर्म समाज से अफ्रीत एक शिक्षक एवं धर्म समाजियों को रिहा कर दिया गया है। तब उन्होंने बाकी लोगों की रिहाई की अपील करते हुए कहा, मैं अपील करता हूं कि हिंसा से प्रभावित उस प्रिय देश में अभी भी 2 अफ्रीत धर्म समाजी हैं, उन्हें और अन्य लोगों को यथाशीघ्र रिहा किया जाए। मैं सभी राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करता हूं कि वे किसी भी विशेष फायदे को त्याग दें और आम हित की तलाश में एकजुटता की भावना से खुद को प्रतिबद्ध करें, एक ऐसे देश की ओर बढ़ें जो शांतिपूर्ण परिवर्तन का समर्थक है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मदद से ठोस सुविधाओं द्वारा संस्थाएं अपने नागरिकों के बीच व्यवस्था एवं शांति वापस लाने में सक्षम हो सकें। उसके बाद संत पापा ने युद्धग्रस्त देशों के लिए प्रार्थना जारी रखने का आग्रह करते हुए कहा, हम यूक्रेन, फिलिस्तीन एवं इसराइल तथा सूडान में युद्ध से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करना जारी रखें। तत्पश्चात उन्होंने रोम, इटली एवं विश्व के विभिन्न देशों से आए सभी तीर्थयात्रियों और पर्यटकों का अभिवादन किया।
Che siete venuti da Roma, dall'Italia e da tante parti del mondo.
उन्होंने रोम मैराथन में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का विशेष रूप से अभिवादन किया, जो खेल एवं भ्रातृत्व का एक पारंपरिक उत्सव है। पोप ने कहा,
Anche quest'anno per iniziativa di Atletica Vaticana, numerosi atleti sono coinvolti nelle staffette della solidarietà.
इस वर्ष भी एथलेटिका वतिकाना की पहल पर कई एथलीट एकजुटता दौड़ में शामिल हुए हैं, जो बांटने के गवाह बन रहे हैं। और अंत में अपने लिए प्रार्थना का आग्रह करते हुए संत पापा ने सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Bravo.
अगर पाप का करना है विनाश, अगर पाप का करना है विनाश, रखो यीशु मसीह पे विश्वास, रखो यीशु मसीह पे विश्वास। अगर पाप का करना है विनाश, अगर पाप का करना है विनाश, रखो यीशु मसीह पे विश्वास, रखो यीशु मसीह पे विश्वास। मन जब पाप से भर जाता है, आदमी खुदा को भूल भटक जाता है, आदमी भटक जाता है, पाप के बाद पाप करता है जाता, पाप के बाद पाप करता है जाता। जीवन में पापों का ढेर रचता है, जीवन में पापों का ढेर रचता है। पाप मुक्ति की ये सूही आस, पाप मुक्ति की ये सूही आस, रखो ये मसीह पे विश्वास, रखो ये मसीह पे विश्वास। पाप माफ सारे करता है यीशु, मैल पाप का धो देता है यीशु, मैल पाप का धो देता है यीशु। पछतावा पापों का करता है जो भी, पछतावा पापों का करता है जो भी, उसे नया जीवन देता है यीशु, उसे नया जीवन देता है यीशु। पाओ उद्धार यीशु के पास, पाओ उद्धार यीशु के पास, रखो यीशु मसीह पे विश्वास, रखो यीशु मसीह पे विश्वास। यीशु पे रख।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। मेरिडा स्पेन के संघों को एक वीडियो संदेश में संत पापा फ्रांसिस ने याद दिलाया कि पवित्र सप्ताह अनुग्रह का समय है, जिसे प्रार्थना और हमारे सबसे जरूरतमंद भाइयों और बहनों के लिए समर्पित किया जाना चाहिए। मेरिडा अपने प्राचीन रोमन स्मारकों के लिए स्पेन के सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक है, इसे स्पेनिश रोम भी कहा जाता है। धार्मिक आयोजनों को बढ़ावा देने वाले कई स्थानीय संप्रदायों को संबोधित वीडियो संदेश में संत पापा ने कहा कि बहुत कम शहर उन दिनों का अनुभव कर सकते हैं जिन्होंने 2000 से अधिक वर्षों की प्राचीनता के साथ मानवता के इतिहास को बदल दिया, जो कि प्रभु के दुखभोग के समय के समकालीन है। मेरिडा में सभी को अपनी आध्यात्मिक निकटता का आश्वासन देते हुए संत पापा ने कहा कि जब वे रोम के कोलोसेयम में दुनिया भर के विश्वासियों के साथ क्रूस मार्ग का नेतृत्व करेंगे, तो वे मेरिडा के रोमन एम्पीथिएटर के प्रभु के दुख भोग में भाग लेने वाले सभी विश्वासियों को भी विशेष रूप से याद करेंगे। पवित्र सप्ताह समारोह की तैयारी करने वाले बंधुत्व संगठनों को संबोधित करते हुए संत पापा ने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया कि पवित्र सप्ताह का अनुभव भाग लेने वालों पर एक अमिट और स्थायी छाप छोड़े। उन्हें याद दिलाया कि यीशु के दुख भोग का पुनः प्रदर्शन कोई तमाशा नहीं है, बल्कि हमारी मुक्ति की उद्घोषणा है और इस कारण इसे अपनी छाप छोड़नी चाहिए। उन्होंने कहा, पवित्र सप्ताह के दौरान हम प्रार्थना में समय व्यतीत करें, ईश्वर के वचन को सुनें, हमारे पीड़ित भाइयों और बहनों की देखभाल करने वाले अच्छे समारी का उदाहरण का अनुसरण करें। पवित्र सप्ताह अनुग्रह का समय है जो प्रभु हमें देते हैं, ताकि हम अपने दिल और हमारे समुदाय के दरवाजे खोलकर यीशु और अन्य लोगों से मिलने के लिए बाहर जा सकें, हमारे लिए विश्वास का प्रकाश और खुशी भी ला सकें। और वाटिकन के संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में रविवार 17 मार्च को संत पापा फ्रांसिस ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। प्रार्थना के पूर्व उन्होंने रविवारीय धर्मविधि के लिए चयनित सुसमाचार पाठ पर चिंतन किया और युद्ध से पीड़ित देशों के लिए प्रार्थना करने हेतु अपील की। इसी के मद्देनजर संत पापा फ्रांसिस ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर दो ट्वीट किया। पहले ट्वीट में संत पापा ने लिखा, ईश्वर के लिए महिमा मानवीय सफलता, प्रसिद्धि और लोकप्रियता नहीं है, यह जनता की तालियों के बाद शक्ति की एक भव्य अभिव्यक्ति नहीं है। ईश्वर के लिए अपनी जान देने की हद तक प्रेम करना ही महिमा है। दूसरे ट्वीट में संत पापा ने लिखा, आइए हम यूक्रेन, फिलिस्तीन, इसराइल और सूडान में युद्ध से पीड़ित आबादी के लिए प्रार्थना जारी रखें, और हमें सीरिया को नहीं भूलना चाहिए, एक ऐसा देश जिसने लंबे समय से युद्ध के कारण बहुत नुकसान झेला है। उधर संत पापा फ्रांसिस ने बुल्गारिया के प्राधिधर्माध्यक्ष नियोफिट के निधन की जानकारी पर गहरा दुख व्यक्त किया। बुल्गेरियाई ऑर्थोडॉक्स कलीसिया के प्रमुख की 13 मार्च को 78 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। शुक्रवार 15 मार्च को वर्ना के मेट्रोपॉलिटन युवान और लोकम टेनिस के प्राधिधर्माध्यक्ष वेली की प्रेसलाव को भेजे एक टेलीग्राम में संत पापा ने प्राधिधर्माध्यक्ष नियोफिट की सुसमाचार और संवाद के लिए मूल्यवान सेवा को याद किया, जो 24 फरवरी 2013 को प्राधिधर्माध्यक्ष का पद ग्रहण किया था। संत पापा ने कहा, अपने कई कष्टों के बावजूद प्राधिधर्माध्यक्ष नियोफिट विनम्रता और आनंदमय व्यक्ति बने रहे, प्रभु और उनकी कलीसिया के प्रति समर्पित जीवन का एक उदाहरण थे। संत पापा ने बुल्गेरियाई ऑर्थोडॉक्स कलीसिया के सभी सदस्यों को अपनी प्रार्थनाओं में विशेष स्मरण का आश्वासन देते हुए अपना संदेश समाप्त किया। उधर देश में लोकतंत्र समर्थक विरोधी प्रदर्शनों के 13 साल पूरे होने के मौके पर हजारों लोग सीरिया के विद्रोहियों के कब्जे वाले उत्तर पश्चिम की सड़कों पर उतर आए। 2011 के विरोध प्रदर्शनों का गंभीर दमन, जो मध्य पूर्व के अरब स्प्रिंग विद्रोह के दौरान शुरू हुआ था, ने एक जटिल गृह युद्ध शुरू कर दिया, जिसमें विदेशी ताकतें और जिहादी शामिल हो गए। इन वर्षों में करीब 5 लाख से अधिक लोगों की मौत हो गई और कई लोगों को देश और विदेश में विस्थापित होने के लिए मजबूर होना पड़ा। गत सप्ताह की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने सभी हितधारकों से वास्तविक और विश्वसनीय राजनीतिक समाधान तक पहुंचने के लिए वह सब करने का आग्रह किया जो आवश्यक है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि मनमाने ढंग से हिरासत में रखना, जबरन गायब करना, न्यायेतर हत्याएं, यौन और लिंग आधारित हिंसा, यातना और अन्य उल्लंघन जारी हैं, जो सीरिया की शांति में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। उधर गजा पट्टी में पिछले 24 घंटों में 92 लोग मारे गए। हमास द्वारा संचालित गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी। 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल के खिलाफ हमास के हमले के बाद युद्ध शुरू होने से लेकर अब तक गाजा में मरने वालों की कुल संख्या 31,645 हो गई है और 73,000 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल द्वारा उद्धृत जानकारी फिलिस्तीनी सूत्रों ने भी रिपोर्ट दी है कि इसराइली सैन्य बलों ने पिछले हफ्ते हमास नंबर 3 मरवान ईसा पर हमला किया था, लेकिन उसकी स्थिति स्पष्ट नहीं है। मानवीय मोर्चे पर आटे से लदे 12 ट्रक रविवार सुबह उत्तरी गाजा पट्टी पहुंचे। हमास से जुड़े मीडिया के अनुसार 6 वाहन जबालिया शरणार्थी शिविर में पहुंचे हैं, अन्य 6 गाजा शहर के साथ ही बेत लाहिया और बेत हनाउन के क्षेत्रों में भी आपूर्ति वितरित की जा रही है। गजा में संयुक्त राष्ट्र की मुख्य एजेंसी UNRWA ने चेतावनी दी है कि अकेले फिलिस्तीनी इनक्लेव के उत्तर में 2 साल से कम उम्र वाले 3 बच्चों में से लगभग 1 या 28% गंभीर कुपोषण से पीड़ित हैं। पिछले हफ्ते विश्व खाद्य कार्यक्रम देश के उत्तर में 88 टन खाद्य पार्सल और गेहूं का आटा पहुंचाने में कामयाब रहा, जो 25,000 लोगों के लिए पर्याप्त था, लेकिन चेतावनी दी कि अगर भोजन की मात्रा नहीं बढ़ी तो अकाल निश्चित है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।